امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی؟ السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. چین اور بھارت نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک اعلی سطحی اجلاس میں سرحدی کشیدگی کے خاتمے پر اتفاق کیا ہے. چین کے اسٹیٹ کونسلر وانگ جی اور بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے درمیان جمعرات کو ماسکو میں ملاقات ہوئی. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے حالیہ سرحدی کشیدگی میں اضافے پر بات چیت کی اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے 5 نکات پر اتفاق کیا. دونوں ملکوں کی جانب سے جاری کیے گئے ایک مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سرحدی کشیدگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. دونوں جانب سے فوجیوں کو فوری طور پر سرحد سے ہٹایا جائے اور تناؤ میں کمی لائی جائے. دونوں ملکوں کے اعلیٰ سفارتی عہدیداروں کے درمیان یہ ملاقات ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر الگ سے ہوئی, جس میں سرحدی کشیدگی کے خاتمے پر اتفاق کیا گیا. چین اور بھارت کے درمیان یہ پیش رفت ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب رواں ہفتے لداخ میں متنازع سرحد پر فائرنگ کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کرنے کے الزامات لگائے تھے. ادھر طویل انتظار کے بعد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان امن مذاکرات ہفتے سے قطر کے دارالحکومت دوحا میں شروع ہو رہے ہیں. طالبان کے دوحا دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے بتایا کہ طالبان ہفتے کے روز بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے. طالبان کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ان کے باقی ماندہ 6 قیدی خصوصی طیارے کے ذریعے دوحا پہنچ گئے ہیں. دوسری جانب پاکستان نے بھی امن مذاکرات کے شروع ہونے کو خوش آئند قرار دیا ہے. افغانستان کے قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اپنی ٹیم کے ہمراہ جمعے کو قطر پہنچ رہے ہیں. کونسل کے ایک ترجمان فریدون خازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عبداللہ عبداللہ دوحا میں بین الافغان مذاکرات کی ہفتے کے روز ہونے والی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے. انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے نگراں وزیر خارجہ اور حکومتی عہدیدار بھی ان کے ہمراہ ہیں. ترجمان کے مطابق طالبان اور افغان امن مذاکراتی ٹیم کے درمیان بات چیت کا آغاز پیر سے ہوگا. طالبان نے بھی ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ ان کی ٹیم دوحا میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں شرکت کرے گی. طالبان کے دوحا آفس کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے جمعرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن معاہدے کے تحت اگلے مرحلے کے لیے بین الافغان امن مذاکرات کے سلسلے میں طالبان تیار ہیں. طالبان کی 21 رکنی مذاکراتی ٹیم کی قیادت مولوی عبدالحکیم کر رہے ہیں. انہیں طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ اخندزادہ کا قابل اعتماد ساتھی تصور کیا جاتا ہے. طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں رہبر شورا کے 13 ارکان بھی شامل ہیں. دوسری جانب افغان حکومت کی جانب سے وفد کی سربراہی محمد معصوم ستانکزئی کریں گے, جبکہ افغان ٹیم میں خواتین بھی شامل ہیں. طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں کوئی خاتون شامل نہیں ہیں. امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو کیے گئے دہشت گرد حملوں کو آج 19 برس ہو رہے ہیں. اس سانحے میں ہزاروں شہری ہلاک و زخمی ہوئے تھے. 9/11 کی 19ویں برسی کے موقع پر امریکہ میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے. امریکہ میں 9/11 کے واقعے کو ایک ایسے ماحول میں یاد کیا جا رہا ہے جب COVID-19 نے پورے معاشرے کو سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے. اس ماحول میں نیو یارک میں 9/11 یادگار اور میوزیم آج 11 ستمبر کو 9/11 واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے لیے کھولا گیا ہے, جبکہ عام لوگوں کے لیے کل کھولا جائے گا. آئندہ انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار جو بائیڈن جمعے کو پینسلوینیا میں اس مقام کا علیحدہ علیحدہ دورہ کر رہے ہیں جہاں ہائی جیک کیے جانے والا ایک جہاز گر کر تباہ ہوا تھا. وائٹ ہاؤس کے حکام کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پینسلوینیا میں فلائٹ 93 نیشنل میموریل کا دورہ کریں گے. دوسری جانب جو بائیڈن جمعے کو دہشت گردی کا نشانہ بننے والے مسافر بردار طیارے میں ہلاک ہونے والوں کی یادگار پر جائیں گے. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہی ہیں راؤنڈ ٹیبل.
السلام علیکم سامعین, شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے بھارت میں کرونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں. نئی دہلی میں ہمارے نامہ نگار سہیل انجم نے 7 ستمبر کو اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ بھارت کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 90,802 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی, جو ایک عالمی ریکارڈ ہے. 7 ستمبر کو بھارت میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 42,04,614 تھی. انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق اس ملک میں اب تک تقریباً 5 کروڑ افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس اب چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے. سبھی ماہرین کے مطابق اس اضافے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دہلی سمیت بہت سے علاقوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر ہے. احتیاطی اقدامات سے لوگ تھک گئے ہیں اور اب بغیر ماسک کے گھومتے نظر آتے ہیں, جو کیسز میں اضافے کی ایک وجہ ہے. صرف بھارت میں نہیں, دنیا بھر میں. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھارت دنیا میں آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے, اور ہمیں اسی تناظر میں اس ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کو دیکھنا چاہیے. ہم اس تعداد کا مقابلہ ان ملکوں سے نہیں کرتے جن کی آبادی بھارت سے چوتھائی بھی نہیں یا اس سے بھی کم ہے. تو آج ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بھارت میں کیا صورتحال ہے, کس حد تک بہتری کی علامات نظر آتی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھارت میں کرونا کے انسداد کی ویکسین اب تیاری کے کس مرحلے پر ہے. ہمارے آج کے پروگرام میں جو ماہرین شرکت کر رہے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محسن ولی, سینئر کنسلٹنٹ ہیں سر گنگا رام ہاسپٹل میں, اور وہ 3 بھارتی صدور کے فزیشین رہ چکے ہیں. ڈاکٹر پروفیسر جگل کشور ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں صحت کے ماہرین میں, اور وہ کمیونٹی میڈیسن کے شعبے کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں. ڈاکٹر گایا موسیسیان سعید کارڈیولوجسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور 2 بچوں کی ماں ہیں, اور اس لیے کرونا وائرس کے نتیجے میں بچوں کو اسکول کے جو مسائل درپیش ہیں خاص طور پر وہ ان پر بات کریں گی. ڈاکٹر ندیش بھردواج, ان کا تعلق دلی سے ہے لیکن تعلیم انہوں نے ہماچل پردیش کے ایک علاقے سولن میں حاصل کی ہے, اور اس لیے یہ پہاڑی اور دور افتادہ علاقوں کے مسائل سے بھی بخوبی واقف ہیں. تو ہمارے یہ سب مہمان ساتھ موجود ہیں. آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر محسن ولی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ ہمیں سب سے پہلے ایک جائزہ بتائیں, مختصر جائزہ, کہ بھارت میں کیا صورتحال ہے کرونا وائرس کی, ٹیسٹ کس تعداد میں ہو رہے ہیں, کیسز کی تعداد کیا ہے, اور ایک اچھی خبر بھارت سے یہ ہے کہ اموات کی شرح کم ہے, تو یہ سب تفصیل اگر آپ ہمیں بتائیں.
دیکھیے, انڈیا جو ہے اس نے بہت اچھا کیا ہے. اگر ہم پورا کورونا کا سفر دیکھیں انڈیا کا, کہ ہندوستان میں شروع میں ایک بھی N95 ماسک نہیں بنتا تھا, نہ وینٹیلیٹر تھے ہمارے پاس ریڈی ہوئے. تو ہم نے جو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا ہے, اس لاک ڈاؤن سے ہم نے کورونا کو بہت زیادہ ڈیلے کر دیا ہے. جو کیسز اب بڑھنے میں دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ شاید اپریل مئی میں اتنے ہو جاتے, اور پھر کوئی اس کی حد نہیں رہتی. ہم نے بہت قابو کیا, ہم نے کرو کو فلیٹن تو نہیں کیا, لیکن ہم نے کرو کو اتنے دھیرے دھیرے بڑھایا کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھاراوی جیسے شہر میں, بامبے میں, جہاں اتنی پتی گلیاں ہیں کہ 2 آدمی ایک ساتھ نہیں نکل سکتے, جو ورلڈ کا سب سے بڑا سلم ہے, اس میں ہم نے کورونا کو کنٹرول کر کے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس کو WHO نے بھی سراہا ہے اور پورے ورلڈ نے اس کو سراہا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگوں میں جو کورونا سے روک تھام کی ایک اندرونی طاقت ہے, وہ امیونٹی جو ہرڈ امیونٹی سے ملتی جلتی ہے, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹی بی اور ملیریا کافی ہوتا رہا ہے اور لوگوں نے اس کی دوائیں کھائی ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں میں جو اموات ہیں, ڈیتھس ہیں, وہ بہت کم ہوئی ہیں. और शुरू से ही हमारा जो डेथ का ट्रेंड है वो बहुत कम रहा है। ये दूसरी बात है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है और जितनी आबादी हमारी डॉक्यूमेंटेड है उससे थोड़ा ज्यादा ही है, उस आबादी को देखते हुए आज की भी जो डेथ रेट है वो पर मिलियन आबादी को अगर हम देखें तो लोएस्ट है, लो है, और 3102 पर मिलियन की रेट है जो आज ही ICMR ने कंफर्म की है। सिचुएशन इज फार बेटर। और इसके अलावा हमारे यहाँ डेथ्स की जो तादाद है वो कम होने के साथ साथ कहीं कहीं गांवों में जो है, क्योंकि केसेस अभी बढ़े हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी वजह से एकदम से काउंट बढ़ा है, जो कि मेरे हिसाब से कोई भी ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है और इस पर हम बहुत जल्दी काबू पा लेंगे, बशर्ते हमारे लोग मास्क लगाते रहें, 2 मीटर का डिस्टेंस रखते रहें, हैंड्स को सैनिटाइज करते रहें और बगैर जरूरत के बाहर ना निकलें। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने पूरा काम राइट फ्रॉम द डे वन किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने, और कई बार प्रधानमंत्री जी ने आके लोगों से गुजारिश की है कि वो अनुशासित रहें, मतलब डिसिप्लिन रहें, अपने को काबू में रखें और इधर उधर ना निकलें। और हर एक डायल टोन में ये आवाज आती है कि कोरोना का लॉकडाउन जो था वो अब खुल गया है और अब हमको बहुत ही डिसिप्लिन वे में बाहर निकलना है। तो इन सब बातों को जब मैं जोड़ता हूँ तो मुझे ये बात जो है ज्यादा वो खतरनाक नहीं लग रही है।
डॉक्टर साहब, मैं आपके पास अब वापस आती हूँ आपसे मजीद सवाल पूछने के लिए, लेकिन मैं अब चाहूंगी कि मैं प्रोफेसर जुगल किशोर साहब से पूछूं, कम्युनिटी मेडिसिन से आपका ताल्लुक है, आपसे मैं ये पूछूंगी कि क्या इसमें कोई तख्सीस है, जैसे यहाँ अमेरिका में ये पता लगा कि जो गरीब आबादियां हैं उनमें कोरोना वायरस ज्यादा है, अमवाद भी वहाँ पे ज्यादा होंगी, तो क्या इस तरह की कोई चीज आपको इंडिया में नजर आई?
जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। हमारा देश अभी अमेरिका के पॉपुलेशन से 3 गुना ज्यादा है और चाइना का अगर हम पॉपुलेशन देखें अभी वो हमारे से ज्यादा है, लेकिन कुछ ही दिनों में हम उनसे भी ज्यादा निकलने वाले हैं। तो एक थर्ड पॉपुलेशन होने के नाते उसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हुआ, लेकिन वहां पर इतने सारे क्यों नहीं दिख रहे हैं वो समझ में नहीं आता कि ऐसा चाइना में क्यों है कि वहां पर केसेस नहीं है। बट एनीवे, जो अमेरिका में केसेस हैं उनका रीजन ये है कि वहां पर टेस्टिंग बहुत ज्यादा हुई है। उस तरह की टेस्टिंग अगर इंडिया में हो तो शायद बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे, केस बहुत मिलेंगे। और कुछ इस तरह का भी अनुमान है कि अगर हम टेस्ट बढ़ा दें और तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका कई गुना केस आपको मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर ये केस हमारे माइल्ड इन नेचर हैं और मॉडरेट हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं और उस तरह से डेथ नहीं है जिस तरह से और दूसरे देशों में देखी गई। पर ओवरऑल इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो वर्ल्ड की जो डेथ रेट है उसके जैसी या उससे कम है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका कहना कि कुछ ऐसे हमारे इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा रहा वो डेफिनेटली भीड़ वाली जगह या स्लम रहे, और सबसे पहले ये इंडिया में मुंबई, दिल्ली, इंदौर और इस तरह की जगह पर जहाँ पर इंटरनेशनल हमारे फ्लाइट्स आते हैं वहीं पर देखे गए और वहीं पर ये फैला। और उसके बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सारे लोग इन शहरों से गाँव की तरफ गए तो अपने साथ में इन्फेक्शन लेके गए और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये छोटे शहरों में और गांव की तरफ फैला। तो देश इतना बड़ा है और आबादी बहुत ज्यादा है तो इसलिए इसका बढ़ना लाजिम है और अभी कुछ वक्त तक हमें और केस देखने को मिलेंगे।
शुक्रिया। अभी आप सब आप रहिए हमारे साथ, अभी मजीद इसमें सवाल आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं अब डॉक्टर गाया मोसेजियान से पूछूंगी कि आप मुझे बताइए, आप सोशल वर्क भी करते हैं और फिर जाहिर है कि बच्चों की माँ होने की वजह से स्कूल्स की जो सूरत हाल है, ये बच्चे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है उन मुल्कों के लिए जहाँ औरतें बड़ी तादाद में बाहर काम करती हैं और उनके लिए ज़रूरी है कि बच्चे स्कूल में भी जाएं या बेबी सीटिंग के लिए भी दें, तो आपको क्या सूरत हाल नज़र आती है इस वक्त, यानी मईशत पर और एक सोशल लाइफ पे क्या असर आपको नज़र आता है कोरोना वायरस का?
थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। थोड़ी सी करेक्शन हम करना चाहिए, हमारे दो बच्चे हैं स्कूल एज का, स्कूल में पढ़ते हैं
सॉरी
और दो बच्चा का स्कूलिंग बहुत मुश्किल है आज के जमाने में. इससे पहले स्कूल जाते थे आसानी था, अब तो स्कूल घर बन गया. घर में स्कूल भी है, पेरेंट्स भी है, हम लोग टीचर भी है, पढ़ाते भी है. टीचर्स बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं. हमको लग रहा है विद्यालय में इतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता था कितना अभी ऑनलाइन में पढ़ाई होता है. बच्चा लोग को ज्यादा नॉलेज देते हैं, बहुत दिल से देते हैं, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट बनाते हैं. इवन तक हिंदी हम बैठी हुई बच्चा के साथ सीखने के लिए इंटरेस्ट होता है.
अच्छा.
क्लास का बहुत अच्छे से चलता है तो बच्चा का दिन पूरा फुलफिल हो जाता है और बाहर जाने का सोच भी नहीं होता है क्योंकि वक्त नहीं रह जाता है बच्चा के पास. उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग से लेके लिखना है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लिखना है, क्लास वर्क अलग, होमवर्क अलग लिखना है, एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है. तो पेरेंट्स को भी मदद करना पड़ता है बच्चा लोग को. शुरू में मुश्किल था बच्चा लोग को, तो वो मैनेज हो गया. अब तो इतना महीना हो गया, इन लोग अच्छे से करते हैं बिना हमारे मदद का.
लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि जाहिर आप एक तालीम याफ्ता खातून है और आपके खानदान भी, तो आप तो मदद कर सकती हैं, लेकिन इंडिया में बाकी वो बच्चे जैसे कि जिनकी माएँ तालीम याफ्ता नहीं है बल्कि दोनों ही पेरेंट्स जो हैं पढ़े लिखे नहीं है, वो फिर क्या ऑनलाइन उनका क्या सिलसिला है?
इन लोग को बहुत परेशानी होता है. कुछ है EWS बच्चे लोग हैं, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाते हैं. है बहुत ऐसे क्लास में भी एक बच्चा है, उसका असेसमेंट्स भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन होते हैं, वो बच्चा कोई भी सब्जेक्ट में नहीं कर पाता है, नहीं अटेंड भी नहीं कर पाते हैं. और कुछ होते हैं बच्चे लोग है ऑनलाइन मगर जवाब नहीं दे पाते हैं, नहीं समझते हैं, वो लोग डर भी जाते हैं.
मैं स्कूल के बारे में यही कहना चाहूंगा कि हमने एक आर्टिकल भी लिखा, इंडिया में जल्दी से जल्दी स्कूल खोलने का प्रावधान होना चाहिए या खोलना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर बच्चे हैं वो गांव में हैं और स्लम्स के अंदर है जहाँ पर किसी तरह का इंटरनेट या फोन सर्विसेज नहीं है, और उन बच्चों को गरीबी हालात में रहते हुए जो एजुकेशन उनको मिलती है साथ में स्कूल के अंदर उनको खाना भी मिलता था वो बिल्कुल बंद हो गया. तो एक तरह का कहना चाहिए सोशल क्राइसिस है ये, एजुकेशनल एंड सोशल क्राइसिस. इस वजह से हम देखते हैं कि उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास जो होना चाहिए वो उस पर बहुत असर पड़ रहा है. तो मेरे हिसाब से स्कूल का खुलना आज के वक्त में बहुत जरूरी है. जितने लोग इस बीमारी से बच्चों पे इतना असर नहीं पड़ना है जितना कि उसके दिमाग और उसके शरीर पर पड़ रहा है, तो हमारे हिसाब से स्कूल का खुलना बहुत जरूरी है.
तो बिल्कुल आपने ये कंसर्न हर जगह मौजूद है, लगता है कि उसके बगैर बच्चों की नफसियात पे बहुत खराब असर पड़ रहा है. मैं अब हमारे इस प्रोग्राम में जो सबसे यंग डॉक्टर हैं डॉक्टर नितीश भारद्वाज, उनसे पूछना चाहूंगी. नितीश आप काम करते हैं एक डॉक्टर के ऐसे ऐसे हरियाणा में या दिल्ली में, और इसके साथ साथ आपने जो तालीम हासिल की आपने हिमाचल प्रदेश में सोलन में की है, तो आप आगाह हैं एक ऐसे इलाके से भी जो दूर दराज है, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल दिल्ली में आपको नजर आती है कोरोना वायरस की वजह से लोगों पे जो असर नजर आता है, कि आप क्या समझते हैं कि हिमाचल में इसका असर क्या होगा लोगों पर, वहाँ की आबादी पर?
थैंक यू सो मच मैम फॉर द क्वेश्चन. सबसे पहले मैं अपने आप को काफी प्रिविलेज फील कर रहा हूँ. मैं ये एक्सप्रेस करना चाहूंगा कि इतना एस्टीम पैनल है और मुझे इन्वाइट किया गया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. आपका मैम जो क्वेश्चन है कि एक स्टेट हमारे पास है जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है दिल्ली, जिसके अंदर अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, अलग अलग स्टेट से, इवन अलग अलग कंट्रीज से लोग आके काम करते हैं. वहाँ पे अभी क्या सिचुएशन है एज कंपेरेबल टू जो एक थोड़ा रूरल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे क्या सिचुएशन है? वहाँ पे जो रूरल एरिया है दे आर मोर टूवर्ड्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उसकी वजह से जो कॉम्युनिकेबल डिजीजेस है उसकी प्रेवलेंस उन एरिया में काफी लो है. रीजन बीइंग जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी रहती है, जो नेचर के साथ उनका जुड़ाव रहता है, एक ग्रीनरी रहती है, लेस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट रहता है, थोड़ी बहुत फार्मिंग होती है तो उससे बॉडी एक्टिव रहती है. डॉक्टर वल्ली ने बताया कि एक हर्ड इम्यूनिटी हमारी जो बनी है उसका मेन हमारा क्रक्स रूरल इंडिया में ही है, बिकॉज वो किसी ना किसी लेवल पे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं विद नेचर. और इसी चीज को हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में कंपैरिजन करें तो एक पॉल्यूटेंट लेवल बढ़ जाता है, वर्क स्ट्रेस बढ़ जाता है, एक लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही डूबियस तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से चेंज हो जाता है. स्लीप प्रॉपर नहीं मिलती है, खाना अच्छा नहीं मिलता है, प्लस इस तरीके का पेंडेमिक जब हो जाता है जो आपके पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तो कंपेरेबिलिटी में काफी फर्क आ जाता है. इसी वजह से जो इंडिया में हम इतना जो केसेस हमारे बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब वो इन्फेक्शन गांव तक पहुंच रहा है. बट सिंस हमारी हर्ड इम्यूनिटी अच्छी है, जो उस स्ट्रेटा के लोग काम फिजिकल वर्क ज्यादा अच्छा करते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो वहां पे जो केसेस आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमैटिक या माइल्डली सिम्प्टोमैटिक वाले आ रहे हैं, जिनके अंदर हमें ज्यादा आईसीयू इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ रही.
अच्छा, आप सब हमारे साथ ही रहिए और मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि इस वक्त हम भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं. बहुत ही अच्छा हमारा पैनल है. इन सब का ताल्लुक टिप के शोबे से तो है ही, लेकिन ये वैसे भी कम्युनिटी में एक्टिव हैं. और दोबारा मैं जाऊंगी डॉक्टर वली के पास. डॉक्टर साहब, मैं आपसे अभी पूछूंगी, जुगल किशोर साहब ने बात की चाइना की, तो मुझे ये बताइए कि क्या वजह हुई कि चाइना कंट्रोल कर पाया इस वायरस पे.
चाइना और इंडिया का हम मुकाबला कर ही नहीं सकते. चाइना ने तो सबसे पहले अपने केसेस की तादाद छुपाई है. इंडिया ने ईमानदारी से कोरोना से लड़ाई लड़ी है, अब भी लड़ रहा है. हमारे मरीज जो है उनका हमने बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल की है, इलाज किया है. आज जो होम क्वारंटीन इंडिया में हो रहा है वो सबसे बड़ी तादाद मरीजों की है जो होम क्वारंटीन कर रही है. एसिम्प्टोमेटिक मरीज बहुत ज्यादा हमारे यहाँ है और उनकी इम्यूनिटी अच्छी है और मुझको ऐसा कोई भी खतरा नहीं दिखाई दे रहा, एक्सेप्ट इसके कि हमारे एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनको पता नहीं है कि वो कोरोना को कैरी कर रहे हैं. और कोरोना इज इन द एयर, तो एयर से जब वो कैच करेंगे तभी करेंगे जब मास्क नहीं लगाएंगे. मास्क वो पर्दा है, वो कर्टेन है, वो बैरियर है जो हमको कोरोना के बदन में दाखिल होने से रोकता है. और इस वक्त वाहिद अगर कोई कोरोना की रोकथाम का वर्ल्ड वाइड सोल्यूशन है तो वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है. हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी है, हमारे पास 70% वर्ल्ड को देने के लिए वैक्सीन बनाने की कैपेबिलिटी है. लेकिन दूसरी बात जो अभी आपके जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, जुगल किशोर साहब, उसको मैं यहाँ लाना चाहूंगा कि कोरोना ने जो लोगों के दिमाग को मुतासिर किया है ये बहुत अहम बात है. इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसका मुजाकरा होना चाहिए. अभी अभी ताजा एक रिसर्च आज पब्लिश हुई है इटली से. ये कोविड 19 की डॉक्टर लाचिया की जो वो रिसर्च है और इटली से ये पब्लिश हुई है. और इस रिसर्च में ये बताया गया है कि किस तरह से लोगों के दिमाग जो हैं कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस का शिकार हो रहे हैं. मिलान की ये रिसर्च है सैन रेफरल हॉस्पिटल की, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में ये देखा गया है कि 40% पेशेंट्स को नींद नहीं आ रही है, उसमें से करीब 28-30% पेशेंट्स को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, डिप्रेशन 31% लोगों को हुआ है, एंजाइटी 42% लोगों को हुई है. तो कोरोना से जो बच्चों की आप बात कर रहे थे, तो बड़े और बच्चे इससे बहुत बड़ी तादाद में मुतासिर हो गए हैं और उनको हमको नॉर्मलाइज करना है, नहीं तो आगे हमें बहुत कोरोना वायरस से भी खतरनाक पेंडेमिक को डील करने जा रहे हैं जिसमें लोगों को साइकेट्रिक इलनेसेस होगी. एक और बात मैं ऐड कर दूं कि कोरोना में बेबीज बूम भी होगा, अभी थोड़े दिन बाद बेबीज बूम भी होगा और
दुनिया भर में ऐसा हो रहा है
भी पड़ेगा.
बिल्कुल,
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है. खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में.
ग्रेजुअल स्टेप के साथ लॉकडाउन को खोला है, आज हमने कल से मेट्रो चलाई है, अब हम स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं. जैसे डॉक्टर जुगल किशोर ने रिप्रेजेंट किया है कि स्कूल खुलने चाहिए, मैं भी इस बात का हामी हूँ कि स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो एक स्कूल में स्टूडेंट टीचर से जो रिलेशनशिप होता था वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है. जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटा के बच्चों की बात की गई थी, उनको अभी इस बात की ट्रेनिंग मिल रही है मैं कहता हूँ जब रक्षा वाले के पास मोबाइल फोन है तो उसका बच्चा भी मोबाइल फोन ऑपरेट करना जानता है, तो हमें अपने इन बच्चों का ख्याल रखना है। उन बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी और इनको आगे लाना पड़ेगा, उनको हम छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते।
डॉक्टर साहब, मैं बल्कि यहाँ पे बहुत ही आपने एक अहम बात उठाई है और मैं किशोर साहब से भी पूछूंगी कि एक तो जैसे कि आपने भी जिक्र किया और डॉक्टर साहब ने भी कि नफसियाती मसाइल है, एक और चीज जो दुनिया भर में हुई है खासतौर पे मतलब तरक्की पजीर मुल्कों में, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उनका जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है कोरोना का। पोलियो केसेस की तादाद में इजाफा हुआ क्योंकि उस तरह वैक्सीन पिलाई नहीं जा सकी जो एक कौमी मुहिम होती थी। तो आपको भी क्या इंडिया का इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है आपको उस पर असर नजर आता है कि उसमें कमी आई है बच्चों की इम्यूनाइजेशन में?
आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोविड की वजह से पूरा जो सिस्टम है वो डाइवर्ट हो गया और कहना चाहिए हमारा जो पूरा हेल्थ सिस्टम एक तरफ को झुक गया और उसमें हमारी जो नॉर्मल सर्विसेज थी वो बिल्कुल इफेक्ट हो गई। नॉर्मल का मतलब इवन पेशेंट स्ट्रोक वाले हैं या फिर उनको लगातार जो दवाइयां चलती थी उनको नहीं मिल पा रही थी, या जो हमारे डायबिटीज के पेशेंट थे उनको दवाइयां डॉक्टर से बार बार दिखा के जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वो उस तरह की प्रॉब्लम आई। तो जो हमारे नॉर्मल सर्विसेज हैं वो बहुत इफेक्ट हुई, जिसमें इम्यूनाइजेशन है, ANC एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनमें बहुत फर्क पड़ा। हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं ज्यादातर आशा वर्कर या ANM वो हमारी फील्ड के अंदर वर्कर होती हैं, वो सारी की सारी डाइवर्ट हुई कोविड की तरफ। तो यही जो वर्कर हैं ये हमारी वैक्सीनेशन करते हैं या इम्यूनाइजेशन करते हैं या ANC करते हैं, उस पर बहुत असर पड़ा। कहना चाहिए अगर हम इस वक्त में किसी भी तरह का सर्वे करें और ये देखें कि कितना इम्यूनाइजेशन है तो डेफिनेटली बहुत कम मिलेगा, हो सकता है कि शायद 20% या उससे भी कम संख्या में हमारे कोई वैक्सीनेशन मिले। उसी तरह से हमारे ANC या और दूसरी जो सर्विसेज हैं उस पर असर पड़ा, इसने काफी नुकसान किया है और वो नुकसान हेल्थ के ऊपर भी साथ में हमारी इकोनॉमी और उसमें तो सभी को मालूम है कि पर मेंटल हेल्थ पर भी इस पर बहुत असर पड़ा है, उसकी वजह से बहुत सारी और इश्यूज बढ़े हैं।
यही सवाल अब मैं डॉक्टर गाया आपसे पूछूंगी कि आप मुझे बताइए अपने फील्ड में सबसे ज्यादा कहाँ आपको लगता है कि जो इम्यूनाइजेशन की तो हमने बात की लेकिन जो निगलेक्ट हो रहे हैं, मसलन बहुत सारी सर्जरीज हैं जो नहीं हो पा रही, इसीलिए जगह नहीं थी लोगों की कि उनके लिए सिवाय इमरजेंसी की कोई भी सर्जरी की जाती, तो बहुत सी डॉक्टर्स ने पोस्टपोन कर दी थी सर्जरीज वगैरह, तो क्या ये सूरत हाल इंडिया में भी है?
यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, सेम हालत है। उनको पेशेंट्स है, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स थे कि इन लोगों का इलाज नहीं हो पाया टाइम पर। कैंसर पेशेंट्स थे किसका सी बिजी था प्लांट करके, इलेक्टिव सर्जरीज थे, वो लोग सब बंद हो गए थे, बहुत सारा नुकसान हो गया दूसरे पेशेंट्स को। और एक और बात है, पेशेंट्स किसको कोविड नहीं है, कोरोना वायरस नहीं है, तकलीफ हो रहे, कैसे हार्ट अटैक हो रहे, कुछ दिक्कत हो रहे, वो लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। एक डर है इन्फेक्शन का, एक डर है जांच करने के लिए, इवन खून की जांच नहीं किया, इम्यून सुप्रेस पेशेंट्स है, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। और बहुत क्रिटिकल सीरियस कंडीशन हो जाता है तब पहुंचते हैं हॉस्पिटल। अब तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं, अब क्रिटिकल कंडीशन है, नो ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें दिक्कत हो जाता है, कॉमन डिजीजेस एस्केप हो जाते हैं, पेशेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं, लेट पहुंच पाते हैं, इलाज नहीं हो पाता है प्रॉपरली।
तो इसके लिए कोई सूरत निकाली आप लोगों ने, काउंसलिंग या कोई चीज ऐसी है जो मदद करे आम जो लोग हैं जिनके बहुत जो है रिसोर्सेज भी नहीं है?
इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे कंसल्टेशंस खुल गया है, ऑनलाइन डॉक्टर्स यहाँ पे भी इलाज करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन करना अलग की बात है, देख के ऑस्कल्टेट करके एग्जामिनेशंस है, ECG करना होता है, फर्स्ट होता है जांच किसको करना चाहिए, वो टाइम पर करना चाहिए।
मैं डॉक्टर मोसेसिया को कंटिन्यू करूंगा और वो ये है कि टेक्निकली अगर हम देखें तो काफी सारे कोर्सेज जो ऑनलाइन एजुकेशनल कोर्सेज होते हैं जो पहले ऑनलाइन थे, उससे पहले एक टर्म यूज होती थी DLP डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम फॉर डिफरेंट कोर्सेज इवन फॉर MBA एंड ऑल, तो उसके अंदर ज्यादातर कोर्सेज को हम DLP में कन्वर्ट करते थे। मेडिकल स्ट्रीम MBBS, BSc नर्सिंग, ये सारी स्ट्रीम्स ऐसी हैं, मेडिकल ब्रांच की स्ट्रीम्स ऐसी हैं कि उसके अंदर एक टच सही है पेशेंट के साथ। आपको पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ेगा, आपको उसकी पल्स फील करनी पड़ेगी, आपको उसको अपनी आंखों से और अपने हाथ से टच करके महसूस करना पड़ेगा कि क्या इशू है। ऑनलाइन कंसल्टेशन में अच्छी है, हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं आज के टाइम में क्योंकि वो जरूरत है, बट वो एक चीज मिसिंग है।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
डॉक्टर निदेश, आप बल्कि आप मुझे ये बताइए, आपकी वो जनरेशन है जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, ट्वीट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, मतलब हर जगह, तो उसमें हमें जो लगता है कि एक तूफान जैसे टूट गया ना, बंद टूट गया, हर तरह के इलाज हमें नजर आते हैं, तो आप जिन मरीजों को देखते हैं क्या उनमें से किसी ने सोशल मीडिया पर जो मुख्तलिफ इलाज बताए जाते हैं जो उस पर अमल करते हैं लोग, या यकीन नहीं करते सोशल मीडिया पर?
इस ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिर जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है या ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, इस पूरे कोरोना को जांच कर जो सबसे बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है वर्ल्ड वाइड वो WHO है। WHO ने क्लियर वर्ड्स में रिपीटेडली स्टेट किया है कि नोबडी कैन क्लेम दैट दे हैव द मेडिसिन फॉर कोरोना अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफाइड बाय देम, और उन्होंने किसी को भी ये अप्रूवल अभी तक नहीं दिया है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो या इवन एलोपैथिक हो। अजम्पशंस है कि ये हो सकती है या ये एक अच्छी कारगर मेडिसिन साबित हो सकती है, बट वो प्रूफ को नहीं दिया है। सोशल मीडिया पे इस चीज को उछाला जाता है अपने प्रॉफिट की तरफ से कि भाई ये भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट उसकी ऑथेंटिसिटी का हमारे पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। तो कोशिश यही रहती है ऑनलाइन सोर्सेज में कि हम उस चीज को, एक जो फेक न्यूज चल रहा था कि एक चला था प्रोग्राम कि भाई फेक न्यूज ना हो, कि लोगों को गुमराह ना किया जाए, अब गुमराह किया जाता रहे इसके ट्रीटमेंट को लेकर, तो वो हम उससे बच के रहें। सोशल मीडिया पे कोई भी हम अगर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी या कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी या प्रोफाइलेक्टिव प्रिस्क्रिप्शन हम चेक कर रहे हैं तो उसका एक हमारे पास ऑथेंटिकेट प्रूफ होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसमें ये बोलूंगा कि ऑनलाइन इन सब चीजों को देखने का मुद्दा यंग जनरेशन पे, जैसे आपने कहा, तो यंग जनरेशन जो आ रही है, जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज कर रही है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो काफी हद तक एक पढ़ा लिखा स्ट्रेटा है, वो एक एजुकेटेड स्ट्रेटा है
जी।
तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोई भी सोर्स को जब फॉलो करें तो एटलीस्ट दे वेरीफाई कि ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं।
अच्छा, अब उस आते हैं उस चीज की तरफ जो इस वक्त पूरी दुनिया का ख्वाब है और एक मतलब एफर्ट है दुनिया भर में के वैक्सीन की तैयारी। पूरी दुनिया में कोशिशें जारी हैं, यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, चाइना में, कि वैक्सीन तैयार की जाए। तो भारत में किस स्टेज पर है इस वैक्सीन की तैयारी का मरहला या ट्रायल्स का?
इंडिया वर्ल्ड के 70% वैक्सीन की रिक्वायरमेंट को कैच करता है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक वाहिद इदारा है जो ब्रिटिश पीरियड से पूरे वर्ल्ड को 70% वैक्सीनेशन देता है। और हमारे साइंटिस्ट ने फरवरी के एंड में इस वायरस का जीनोम डिकोड कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने तब से ही इस पे वैक्सीन पे काम करना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ ICMR के सुपरविजन में वैक्सीन पे बहुत वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है, और एक सर्कुलर ICMR ने ऑफिशियली निकाला था जिसमें रिक्रूट करने के लिए कहा गया था 13 सेंटर्स को कि वैक्सीन का ट्रायल करें, और वैक्सीन के ट्रायल की सेकंड स्टेज हमने करीब करीब पूरी कर ली है और हम अब थर्ड स्टेज में जाने वाले हैं। और वैक्सीन में जो मुझे ये कहना है कि जो ब्रिटिश वैक्सीन है जो सारा गिलबर्ट के डिपार्टमेंट से शुरू हुआ था बनने के बाद, जिसको हम एडिनोवायरस वैक्सीन कहते हैं, चिंपैंजी से वो बना था, शेडॉक्स, वो वैक्सीन का ट्रायल हमारे मुल्क में हो रहा है अंडर सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ICMR एंड 12 सेंटर्स, एंड वीच हैव कंप्लीटेड फेज 2 ट्रायल्स ऑलमोस्ट, एंड वी विल बी वेरी सून हेडिंग के थर्ड फेज की ट्रायल शुरू हो जाए। हम लोगों के यहाँ ऐसा कोई जल्दबाजी वाला अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, जैसे कि रशिया से बीच में खबर आ गई थी बन गया वाली, तो हमने जो है बहुत सीरियसली और सोबरली, हमारे यहाँ 14 वैक्सीन्स हैं जिनका ट्रायल हो रहा है जिसको हम कैंडिडेट्स कहते हैं, उसमें मेन जाइडस कैडिला के साथ है और रॉयल इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन का वैक्सीन है, सारा गिलबर्ट का वैक्सीन है और हमारा जो कई वैक्सीन ऐसे हैं, इवन कोवैक्सीन के नाम से जो वैक्सीन है वो भी ट्रायल पर है, तो एक बड़ी तादाद है वैक्सीन की जो बहुत जल्दी हम अपने फेज 3 में चले जाएंगे। हमारे यहाँ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हम वर्ल्ड के जो नॉर्म्स हैं सेफ्टी के, उसमें हम कहीं भी किसी को कहने की गुंजाइश न दें और अपने डेटा को पब्लिश करें, ताकि पूरे वर्ल्ड में इस बात को एस्टेब्लिश किया जाए कि हम सेफ्टी और उसकी एफिकेसी दोनों चीजों पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मैं बार बार लोगों से ये कह रहा हूँ कि हम वैक्सीन को टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वैक्सीन है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात मेरे सामने आ रही है वो ये है कि हमें ऑफिशियल लेवल पे इस बात का कमिटमेंट ले लेना चाहिए उन कंट्रीज से कि वो हमको कितना वैक्सीन दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कुछ कंट्रीज ने इंक्लूडिंग यूनिसेफ जो वैक्सीन बनाने के बड़े प्लेयर्स हैं उनको ऑलरेडी बुक कर लिया है एडवांस में, रशिया ने बुक कर लिया है, अमेरिका ने बुक कर लिया है, तो ऐसे हमको भी कर लेना चाहिए बाय नाउ। और ये मैं एक बात ऐसी कह रहा हूँ जो हमें करनी है और आपके आपको सुना रहा हूँ, तो हमको सबसे ज्यादा फिर प्रायोरिटाइज करना है कि किसको वैक्सीन पहले देना है, एल्डर्स को देना है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को देना है कि आर्म फोर्सेस को देना है, तो इस तरह की प्रायोरिटीज फिक्स करनी है। तो वैक्सीन में इंडिया इज एट पार विद अदर कंट्रीज, और हमारे यहाँ जो उस वक्त 4 वैक्सीन की मैं बात करता हूँ, पहला वैक्सीन मास्क है, दूसरा वैक्सीन सोशल डिस्टेंसिंग है, तीसरा वैक्सीन हैंड सैनिटाइजेशन है और चौथा वैक्सीन प्लाज्मा भी है, और प्लाज्मा इंडिया में काफी हद तक शुरू से ही यूज हो रहा है। प्लाज्मा इज ऑल्सो ए वैक्सीन बेस्ड प्रिंसिपली वैक्सीन बेस्ड थेरेपी है और उसमें भी हम बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ प्लाज्मा के जो स्टेशन हैं, जो प्लाज्मा बैंक हैं, वो बने हैं बड़े शहरों में, और हमारे मरीजों को आज भी, मेरे एक पेशेंट को प्लाज्मा लग रहा है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ गंगाराम हॉस्पिटल में, तो प्लाज्मा थेरेपी में हम बहुत सेफ है ये थेरेपी, लोग बहुत डरे हुए हैं इससे कि सेफ नहीं होगी, ये बहुत सेफ है और इसमें हम बहुत आगे हैं। तो जहां तक वैक्सीन का सवाल है, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ लीडर इन वैक्सीन्स एंड इंडिया विल रिमेन अ लीडर इन द वैक्सीनेशन फॉर केसेस ऑफ कोविड ऑल्सो। हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, उसको कैटर करने के लिए हमारे पास सफिशियंट क्वांटिटी में वैक्सीन होना चाहिए, और इसमें दो तरह के वैक्सीन होंगे जो कि ज्यादातर वैक्सीन पे मैंने ये देखा है कि उनकी जो ट्रायल्स हुई है 2 डोजेस के साथ हुई है, तो ये 2 डोजेस का इंटरवल और इसमें इम्यूनिटी कितनी बन रही है और हमको कब कब देना है, ये 2 वीक्स के इंटरवल पे देना है, और कौन सा वैक्सीन सबसे सेफ है हमारे लिए, इन सब चीजों को हम देख रहे हैं। और बहुत जल्दी ऑफिशियली वो दिन दूर नहीं जब इंडिया अगेन सप्लाई करेगा कोरोना का वैक्सीन पूरी दुनिया को।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर किशोर। अब आपसे मैं ये पूछूंगी कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया प्लाज्मा का, ये तरीका बहुत सारे मुल्कों में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये मुझे बताइए कि इसके अलावा कॉम्बिनेशन भी है कुछ दवाओं का जो मुफीद पाया गया, तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो रहा है जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनके लिए?
एक्चुअली मेरे डोमेन से बाहर है क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम थेरेपी की बात करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली जो मेडिसिन में है या फिर पल्मोनरी मेडिसिन में है वो इसको अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सा ठीक है। अगर हम ICMR की गाइडलाइन देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कौन कौन से हम कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से प्लाज्मा, जैसे जेम्स ने प्लाज्मा थेरेपी को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, उसी तरह से कुछ जो ड्रग्स हैं वो कंट्रोवर्शियल है, तो उस पर कुछ भी कहना मुझे लगता है कि मेरे नॉलेज से बाहर है, तो अगर रवि साहब बोलते हैं वो ज्यादा अच्छा है।
मैं थोड़ा सा आउटलाइन देना चाहूंगा, जो ड्रग कॉम्बिनेशन से जब शुरू होना आया था तो हम लोगों ने सबसे पहले ICMR ने, आपको याद होगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमने अपने पैरामेडिकल स्टाफ को दे डाला था, जब ट्रंप साहब ने अनाउंस किया था उस वक्त तक हमने गाइडलाइंस बना के अपने पैरामेडिकल स्टाफ को दे दी थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नॉट क्लोरोक्विन, उसके बाद चार बार WHO को विड्रॉ करना पड़ा और चार बार इंक्लूड करना पड़ा, ये बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल मसला बन गया। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का रोल सिर्फ प्रिवेंशन में है, एक बार पेशेंट को कोविड हो जाता है तो फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इज टोटली आउट, नाइदर इन ICU नॉर इन द रेगुलर यूज। इसके अलावा कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं, उन पर अभी पब्लिकेशन चल रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, हम डेफिनेटली उनके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन IL-6 इनहिबिटर्स जो है वो बहुत अच्छे, हमारे इंडिया में भी बायोकॉन ने बनाया है और जो दो तीन IL-6 इनहिबिटर्स जो अमेरिका में आपके डॉक्टर बीन है वो अपनी मीटिंग्स में कहते हैं, डॉक्टर यो है जो कि इंडियन डॉक्टर है योगेंद्र, वो बहुत अच्छे से इसके बारे में बताते हैं। तो ये कुछ दवाएं हैं, उससे अच्छा अगर हम इस वक्त ये बात कर लें कि हम इन दवाओं के अलावा प्रिवेंटिव यूज में जो दवाएं आ रही हैं उनको कैसे जुडिशियली हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा।
बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब बताइए, आप वो फरमाइए उसके बारे में।
और ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त प्रिवेंटिव दवाओं के चक्कर में बहुत ज्यादा ओवरडोजिंग भी कर रहे हैं। आज ही बॉम्बे से एक पेपर पब्लिश हुआ है डॉक्टर तेजल लाठिया का, उन्होंने खासतौर से ये बात हाईलाइट की है विटामिन डी इसमें मददगार है प्रिवेंशन में और इसको बहुत ज्यादा डोज में लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। विटामिन डी की यूजुअल डोज जो है 150 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा होगी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, उससे लोगों को स्टोन बनने का खतरा हो जाएगा। इसी तरह विटामिन सी को 1 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। जिंक इसमें बहुत मुफीद है, 2-3 चीजें हैं बहुत अच्छी हैं, फिश ऑयल है वो इसमें अच्छा है और आइवरमेक्टोल जो है वो दवा बहुत कामयाब थी, वो बांग्लादेश में उसके ट्रायल्स हुए थे, बांग्लादेश ने दिखाया कि आइवरमेक्टोल और इसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन का कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही अच्छा साबित हुआ और ये सेफ कॉम्बिनेशन है, सस्ता कॉम्बिनेशन है। बाद में फ्रेंच साइंटिस्ट ने इसको एंडोर्स किया, इस पर पब्लिकेशन हुए और ये सस्ती दवाएं हैं। रेमडेसिविर की बहुत ज्यादा बात हुई, रेमडेसिविर को भी मैं जोड़ता हूँ इंडिया से। इसके अलावा कुछ दवाएं हैं जो IL-6 इनहिबिटर्स हैं, वो डॉक्टर्स की चॉइस से हम यूज कर सकते हैं। इसमें मैं ये बात ज्यादा आपके प्रोग्राम के थ्रू हाईलाइट करूंगा लोगों के लिए, जो बेनिफिट की है वो ये है कि प्रिवेंटिव चीजें जो हैं उनको हम विद इन लिमिट्स इस्तेमाल करें और सबसे अच्छा इसका प्रिवेंशन है लंग्स को पावरफुल बनाएं एक्सरसाइज के जरिए, वाइटामिन सी लें और जिंक लें, बी कॉम्प्लेक्स लें, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाएं जो है वो लें। मैं जानकर उन दवाओं का नाम नहीं ले रहा हूँ जो इम्यूनोजेनिक दवाएं, क्योंकि इसमें वायरस में 2 फेजेस होते हैं, शुरू में वायरल फेज होता है उसके बाद इम्यूनोजेनिक फेज होता है, वो बाद में ओवरलैप कर जाते हैं। तो जब तक पेशेंट वायरिमिया वाले फेज में होता है तब तक वो रिवर्सिबल होता है और जब एक बार इम्यूनोलॉजिकल फेज में आ जाता है जिसकी बात मैंने अभी की थी ब्रेडिकाइनिन और ये साइटोकिन स्टॉर्म में चला जाता है तो फिर हमको वेंटिलेटर का, ICU का और उन इम्यूनो मॉड्यूलेटर दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो इस बीमारी में दवाओं की बात हुई है उसमें रेमडेसिविर की बात हुई है। कोरोना में मनी, मेडिसिन और पॉलिटिक्स इन चीजों का दखल हो गया है, तो मैं आपके प्रोग्राम को इन तीनों चीजों से अलग रखते हुए यही कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी इम्यून बूस्टर एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग है, योगा है और इस तरह की जो चीजें हैं जैसे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है जो कि आपके अमेरिका में इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो ये चीजें जो है कोरोना से रोकने के लिए बहुत फायदेमंद है। रेगुलर एक्सरसाइज का रोल इसमें सबसे ज्यादा है और उसमें मेंटल रिलैक्सेशन का भी रोल है, एडिक्वेट स्लीप का भी रोल है। मिनिस्ट्री ने या WHO ने कोई चीज एंडोर्स नहीं की है और हमें जो एंड्रोज मेडिसिन है उनका जो इस्तेमाल है वो डॉक्टर्स के पर्सनल डिसीजन पर छोड़ देना चाहिए।
बिल्कुल, मैं तो हमेशा डॉक्टर साहब बल्कि यही कहती हूँ
और हमको इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि हम हैंड्स को सैनिटाइज करें, नाक को बहुत अच्छे से वॉश करें, गार्गल्स करें ताकि ये वायरस जहाँ एंट्री पॉइंट है इसका वहीं से वॉश हो जाए। दूसरे, हैंड सैनिटाइजर पर मैं जोर देता हूँ। तीसरे, घर में साफ सुथरे कपड़े पहनकर रहें, हो सके तो रोज एक बार कम से कम नहाएं, बाहर से जो चीजें आप ला रहे हैं वो बाहर के हिस्से में रखें और हगिंग है उसको अवॉइड करें। हम जानते तो हैं लेकिन अब जब हम फील्ड में देखते हैं तो हमको लगता है कि लोग बहुत करीब आके बात कर रहे हैं और हल्दी वाला दूध इसमें काफी बातचीत की जा रही है हमारे यहाँ।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर।
امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے با خبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔ تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
اچھا، میں تھوڑا سا وقت باقی ہے تو ڈاکٹر سعید آپ سے پوچھوں گی کہ آپ مجھے بتائیے اب کہ ایک چیز جو ہمیں نظر آئی بہت سارے ملکوں میں، کہ جیسے ابھی جن چیزوں کے بارے میں بھی کبھی بات ہوئی کہ پریونشن میں کام آ سکتی ہیں یا یہ تھوڑا سا بہتر کر سکتی ہیں مرض کو کم، تو فوراً ہم نے دیکھا کہ بازاروں سے وہ غائب ہو گئی یا ان کی قیمت جو ہے دگنی تگنی ہو گئی۔ تو آپ کا کیا تجربہ ہے انڈیا کے بارے میں دواؤں تک ایکسیس کے لحاظ سے؟
ہم ایکچولی انڈیا سے بھی بات کر سکتے ہیں، آرمینیا کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، دونوں دیش میں بھی سیم کنڈیشن ہے، رہا ہوا سامان بھی دام بڑھ جاتا ہے، باہر سے آیا ہوا سامان کا بھی پرائس بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے۔ بولتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس نہیں ہے، ایکچولی ایئر ٹریول نہیں ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ٹریول بھی بہت کم ہے، صرف ارجنسی ایمرجنسی ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں، تو سپلائی بھی کم ہو گیا ہے، کتنا بھی ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ کھانے پینے کے بارے میں بھی ہے، پڑھائی کے سامان میں بھی، کھوپی ہے، کتاب ہے، سب چیز کے بارے میں سیم کنڈیشن ہو گیا ہے۔ ایون تک ٹیکسی ہے، یوبر ہے، ان کا پرائسنگ بھی بڑھ گیا ہے سب چیز کا۔
اچھا، ایک اور چیز بلکہ وہ آپ ہی بتا سکیں گی زیادہ بہتر طور پہ، کہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہوتی تھیں خواتین جو آتی تھیں گھروں میں کام کرتی تھیں، بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے اپنے گھروں میں ان کا آنا بند کر دیا اس ڈر سے کہ انفیکشن نہ لے آئے۔
دلی میں بھی ایسے ہی ہو گیا ہے، ان لوگ کے گھر پہ کام والی لوگ آتے تھے، لاک ڈاؤن میں بند ہو گیا، آنا جانا نہیں تھا، تھوڑی بہت کام والی لوگ سٹارٹ کر لیا، شروع ہو گیا ان لوگ آنا جانا، اس میں بھی خطرہ ہے کیونکہ انفیکشن پھیل جا رہا ہے، اس سائڈ سے بھی ہو جاتا ہے، پیشنٹس بھی آتے ہیں بولتے ہیں کام والی آ گئی، اس سے دو دن کے بعد بیمار بن گیا کوئی مریض ہوتا ہے، ایسے ہی اس میں بھی خطرہ ہے۔
لیکن اس میں دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو بیچاری کام کرنے والے ہیں ان کی تو آمدنی ختم ہو گئی، تو ان کا گزارا پھر ان کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟
لاک ڈاؤن کا شروع کا دو مہینہ بہت پریشان تھا، وہ لوگ آتے تھے بول رہے تھے ہمارا جگہ بند ہے، ہم بہت مشکل سے آ گئے، کوئی کام بھی نہیں کیا، مگر آ گیا اپنا پیسہ لے لیا، ریکویسٹ کر لیا، پیسہ لے کے چلے گیا، گھر پہ بیٹھ جائیں گے سب لوگ، بہت پریشانی ہو جائے گا وہ لوگ کو، کوشش کرتے ہیں مدد کرنے کا۔
تو ڈاکٹر نتیش، اس سے پہلے کہ کنکلوڈ کریں ہم، بس ایک مختصر آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو جیسے کہ شروع میں بتایا کہ ہر جگہ ہوا ہے، یہ صرف انڈیا کی بات نہیں ہے کہ وینٹیلیٹر کم ہو گئے، بیڈس کم ہو گئے، بہت سی چیزیں، اس وقت اسپتالوں کی کیا صورت حال ہے؟ مثلا ہم دلی کی اگر بات کریں تو کیا صورت حال ہے؟
ابھی اگر پریزنٹلی سچویشن ابھی ہم دیکھیں تو موسٹ آف دا جو کووڈ بیڈس اور جو کووڈ ہاسپٹل سرٹیفائی کیے گئے تھے جس میں صرف کووڈ پیشنٹس کو ایڈمٹ کیا جائے گا، تو اس کے اندر کافی بیڈس ابھی ایمپٹی نظر آ رہے ہیں۔ جو آفیشیل گورنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ اسٹیٹ کر رہی ہے کہ پیشنٹس کم آ رہے ہیں ہاسپٹل میں، ان کا ایڈمیشن کم ہو رہا ہے، تو ریزن بینگ کہ لوگوں کے اندر تھوڑی سمجھ آ رہی ہے، جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ سمپٹومیٹک ہیں یا وہ کسی اے سمپٹومیٹک یا سمپٹومیٹک پرسن کے کانٹیکٹ میں آئے ہیں، تو جو ایک جاگرکتا ہوتی ہے وہ لوگوں کے اندر کریٹ ہو گئی ہے، تو وہ خود ہی اپنے آپ کو کوارنٹین میں کر رہے ہیں اپنے ہوم میں، یا پھر اگر وہ آر ٹی پی سی آر وہ ہوم بیس ٹیسٹ کروا کے خود کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو انیشلی دو تین مہینے پہلے کافی کلسٹرڈ والی سچویشن بن گئی دہلی این سی آر ریجن میں کہ بیڈس نہیں مل رہے ہیں، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے ڈرگس کی، یا ہاسپٹل کے اندر ایڈمیشن کے لیے بہت دھکا مکی چل رہی ہے، وہ سچویشن تھوڑی ایز آف ہوئی ہے۔ اس کے کافی سارے کارن ہیں، فرسٹ آف آل جو گورنمنٹ انیشیٹوز ہیں وہ کافی بیٹر ہوئے ہیں کوالٹی میں بھی اور کوانٹیٹی میں بھی، سیکنڈلی جو ایک جنرل اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے سارے پلیٹفارم سے، گورنمنٹ این جی اوز کی آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، ماسک پہننا ہے، اور ایون اگر آپ پازیٹیو آ جاتے ہیں تو آپ کو انیشیلی آئسولیٹ رکھنا ہے، پراپر ٹریٹمنٹ لینا ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، تو وہ لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر رہے ہیں۔
اچھا،
تھرڈ پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے میم، لاسٹ میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ जो लोग अभी भी कोशिश जिनकी मजबूरी है दैट दे गेट आउट ऑफ देयर हाउस फॉर वर्क और फॉर मनी, उनके लिए बस ये एहतियात होगी कि जो डबल मास्क की पॉलिसी है, सिंगल सर्जिकल मास्क प्लस N95 मास्क विदाउट वॉल्व, जिसके अंदर वॉल्व नहीं है, वो उसका यूज करके घर से बाहर निकलें। और प्रेफरेबली ये होगा कि वो एक पेयर ऑफ सर्जिकल ग्लव्स पहन के बाहर जाए या नॉर्मल यूज ग्लव्स भी पहन के बाहर जाए, और जैसे ही घर एंटर करें उसको बाहर ही डिस्पोज ऑफ कर दें। तो इससे जो भी आप किसी भी वायरस के कॉन्टेक्ट में आए हैं वो बाहर ही बाहर निकल जाएगा और आप उसको अपने घर में एंट्री नहीं दें।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अब आखिर में रहूंगी डॉक्टर किशोर, सबसे पहले आपसे कि हम सब की उम्मीद है और लगता भी है कि बहरहाल उम्मीद अफजा इतलात है, वैक्सीन बन जाएगी, तो ये जो कोरोना के बाद की दुनिया होगी उसमें आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या नजर आता है इंडिया के लिए? मुख्तसर,
इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है और बढ़ जाएगी या बढ़ गई है, ये चैलेंज है हमारे लिए। दूसरा, जो डेवलपमेंट हमारे को जिस तरह से होना चाहिए उसको लेकर, लेकिन जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुला लोगों को देखा उसी तरह से बिहेव कर रहे, तो मुझे कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि रेस्पिरेटरी एटिकेट्स की हम इतनी बात की कि बहुत ही स्वच्छता आपको अपनानी है या बहुत हाइजीन आपको रखनी है, तो आप देखेंगे कि वो जो पान खाने वाले हैं, तंबाकू खाने वाले, सुपारी, चरदा, ये सब कुछ चल रहा है और वो लोग थूक रहे हैं। आपका मास्क लगा हुआ है लेकिन वो खा के और उसको थूक रहे हैं। तो वो जो एक मौका मिला था कि इसके थ्रू आप समझ जाएं कि हमें इसको बंद करना है या कम करना है या पब्लिक प्लेस पे हमें नहीं इस तरह से करना है और एक लाइफ को एक अच्छे ढंग से करना है, जैसे सर ने बताया कि हमें फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है और फिर एक जो ये सारी चीजें अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं वो दोबारा से दिख नहीं रही, और वो अगर हो पाया तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वे में देखें तो हाँ, डेफिनेटली होना चाहिए ऐसा, लेकिन जैसा ह्यूमन नेचर है कि वो बदलता नहीं या वो सुधरता नहीं, और जो यहाँ पर मापदंड है डेवलपमेंट के कि भाई आपके पास में किस तरह का घर होगा, किस तरह के माहौल होगा, किस तरह से आपको ट्रेवल करना है, खूब ट्रेवल करना है, जितना ट्रेवल करेंगे आप उतना ही बड़े माने जाते हैं या डेवलपमेंट माना जाता है, तो उससे जो हमारी प्रकृति के ऊपर नुकसान होता है, वातावरण हमारा बिगड़ता है, वो वैसे ही रहना है। तो अगर हम उसको नहीं समझेंगे, हमारा जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है उसको हम ठीक से नहीं समझेंगे, तो पोस्ट कोविड फिर हमारा एक ऐसे ही, देखो 15-20 साल के अंदर हमारे कई सारे पेंडेमिक आ गए, H1N1 आ गया और फिर अब ये कोविड इतना बड़ा लेके आ गया, तो फ्यूचर में इसी तरह से आते रहेंगे और हम इसी तरह से सफर करते रहेंगे।
शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं अब इससे पहले कि आखिर में मैं डॉक्टर वली से कहूँ, लेकिन पहले मैं आपसे डॉक्टर सईद आपसे पूछूंगी, आप बताइए, सिर्फ एक डॉक्टर के हैसियत से नहीं, एक माँ के हैसियत से भी और एक खातून के हैसियत से जो घर चलाती हैं, अपना कम्युनिटी में काम भी करती हैं, आपको इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या नजर आता है पोस्ट कोविड 19?
पोस्ट कोविड 19 हमको लग रहा है सबसे ज्यादा चैलेंज होगा बच्चा लोग का स्कूल जाना, इन लोगों का आदत बन गया घर पे रहने का, हफ्ते में एक बार हम निकल रहे पार्क घूमने के लिए, वो के लिए भी नहीं है तैयार जाने के लिए, बाहर नहीं जाके जाना, ऑनलाइन क्लास इसमें कैसे फेस करेंगे टीचर्स को पता नहीं, हमको बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चा लोग के साइड से, सबको परेशानी हो जाएगा।
मैं कल इंग्लैंड में किसी से बात कर रही थी, तो उनकी टीचर ने कहा कि बच्चे जब आए, इसी हफ्ते खुले थे क्योंकि इंग्लैंड के स्कूल, तो उन्होंने कहा जब बच्चे आए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कैद से छूट कर आए, इतने खुश थे बच्चे। तो मुझे लगता है कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो खुश हो जाएंगे। तो चलिए आखिर में डॉक्टर वली आप कंक्लूड कीजिए हमारे आज के डिस्कशन को।
मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतनी अच्छी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई विदाउट टेबल, और आज के ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, हमारे इंटरनेट का कमाल है, आपकी सलाहियतों का कमाल है और हमारी टीम का कमाल है, और डॉक्टर जुगल किशोर इसमें हमारे सरप्रस्त बन गया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। और ये कहूंगा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बनने जा रहा है, जिसमें शायद हम प्लास्टिक करेंसी यूज करेंगे, हम एयर ट्रैवल कम करेंगे, हम लोगों को घर कम बुलाएंगे, हम 20-30 आदमियों को बुला के शादी कर लेंगे, हम 10-12 आदमियों को बुला के अपनी जो है डेथ की जो है फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लेंगे, शायद बच्चे ऑनलाइन ज्यादा पढ़ेंगे, स्कूल में कम पढ़ेंगे, हमारा एक रहन सहन चेंज हो जाएगा। लेकिन उसमें हमको ये देखना है कि हमारा लव, अफेक्शन, ब्रदरहुड, टीम स्पिरिट एंड ह्यूमन काइंड के अलावा सेव द मदर अर्थ वाला जो थीम है, हम इसको कहीं डिस्ट्रॉय ना कर दे और हम एक ऐसे ह्यूमन बीइंग की तरह सज संवर के निखर के आए जो अपनी मदर नेचर को प्रोटेक्ट कर रहा हो, अपने पड़ोसी का ख्याल रख रहा हो, अपने मूवमेंट को कम रखे, दूसरे की सुविधा को देख रहा हो और अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल कर रहा हो। अगर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर आएगा तो ये ज्यादा अच्छा होगा, न कि हम इस तरह के अपने वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दें कि हमारी एक करेंसी हो, एक गवर्नेंस हो और हमारा एक बॉस हो। नहीं, हमको ब्रदरहुड, लव, कॉम्पैशन और मोहब्बतों के साथ जीना है, और कोरोना से हमको जो एहतियात सीखने को मिली है उनको अपनी जिंदगी का एसेंशियल इंग्रेडिएंट बना के रखना है, और प्यार, मोहब्बत, उल्फत, इबादत, इसमें इबादत भी मैं जोड़ रहा हूँ, उसके साथ हमको वो पैगाम देना है जो हमारे सब बुजुर्गों ने दिया है, हर रिलीजन ने दिया है, एक मानुष जाति, गॉड इज वन, अल्लाह कुल हो अल्लाह अहद और वासुदेव कुटुंबकम, जो चारों बड़े रिलीजन का पैगाम है, इस पैगाम को फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना है। एंड ऑलवेज किसी भी परेशानी के बाद राहत होती है, हमको मायूस नहीं होना है, अपनी उम्मीदों को जगाना है, अपने डिप्रेशन को काबू में रखना है और अपने दिमाग की हालत को ठीक रखना है, एक्सरसाइजेस रेगुलर करनी है, अच्छा खाना खाना है, स्मोकिंग से बचना है, ड्रग्स से बचना है, आजकल इंडिया में ड्रग्स का काफी चर्चा हो रहा है टीवी पे, तो ये सब जो हमारे हेल्थ के दुश्मन है, तो एक बहुत अच्छा सेहतमंद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, नहीं तो हम फिर एक बड़े गड्ढे की तरफ, डूबने की तरफ चल रहे हैं।
बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत पैगाम पे ख़त्म करने का प्रोग्राम को डॉक्टर मोहसिन वली साहब। तो मैं आप चारों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ प्रोग्राम में आने का और सुनने वालों से बात करने का।
बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका भी शुक्रिया।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में हमारी राउंड टेबल आपने सुनी। शिरकत कर रहे थे डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के, डॉक्टर प्रोफेसर जुगल किशोर जो कि कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर गायाए मोसिसियान सईद कार्डियोलॉजिस्ट और कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर निदीश भारद्वाज एक नौजवान डॉक्टर हैं और इन्होंने अपनी तालीम हिमाचल प्रदेश के एक शहर में हासिल की है। तो सामीन, मुझे यकीन है कि बहुत कुछ सीखा होगा क्योंकि जो हिदायत खासकर डॉक्टर मोहसिन वली ने दी है प्रिवेंशन के बारे में वो सिर्फ इंडिया से मखसूस नहीं है, उनकी ज़रूरत दुनिया के हर मुल्क में है। हमें उम्मीद है कि आप इन पर अमल करेंगे और इसके साथ ही शहनाज अजीज़ को इजाज़त दीजिए आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।
प्रोग्राम आपने सुना राउंड टेबल।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर
जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, उर्दू voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं उर्दू voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप अभी सुन रहे थे खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया।